आगे सबक देखिए भाई, फइन तज़व्वज जमरातन अला हादा दन्न मिन अल खल्ली फइदा हुवा खमरुन फलहा महरु मिस्लिहा इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह وقال لها مثل وزنه خلا وإن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تجب القيمة بھئی گزشتہ سبق میں साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि अगर कोई शख्स किसी औरत से निकाह करता है और साथ कोई ऐसी शर्त जिक्र करता है जिसमें औरत का नफा है और इस नफे की वजह से औरत अपने महरे मिसल से कम महर के अंदर राजी हो जाए, तो इस सूरत में अगर खावंद ने वो शर्त पूरी की तो औरत को वो जो महर जिक्र किया है वो ही मिलेगा, और अगर खावंद ने शर्त पूरी न की तो फिर इस सूरत में औरत को पूरा महरे मिसल देना पड़ेगा। वजह यह कि औरत जो है अपने नफे की वजह से कम महर के अंदर राजी हुई थी, तो जब उसको वो नफा नहीं मिला मालूम हुआ अब उस कम महर पर उसकी रजामंदी भी नहीं है भाई। और फिर दूसरी सूरत जिक्र की थी कि अगर एक औरत किसी शख्स से निकाह करती है और दो मुसम्मा जिक्र कर देती है दो अलग अलग शर्तों के साथ, मसलन औरत ने कहा कि मेरा महर 1000 होगा अगर तुमने मुझे इसी शहर में ठहराया, और मेरा महर 2000 होगा अगर तुमने मुझे दूसरे शहर मुंतकिल किया। खावन इस पर राजी हो गया। तो याद रखो इसमें इमाम साहेब और साहिबैन और इमाम जुफर तीनों इख्तिलाफ करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस सूरत के अंदर जो पहली शर्त जिक्र की वो मुंजिज है, यानी फौरन वाकई हो गई, यानी महर 1000 दिरहम भी मुकरर हो गया। इसलिए क्योंकि जब पहला महर जिक्र किया है तो अभी दूसरा महर आया ही नहीं, लिहाजा वो मुतायन हो गया। और फिर जो दूसरी शर्त जिक्र की वो मुअल्लक हो गई, अगर वो यहां से किसी और जगह मुंतकिल करेगा तो फिर दूसरा तस्मिया भी आ जाएगा और पहला भी मौजूद है, तो उस वक्त जो है तस्मिया के अंदर फसाद आ गया, तायीन नहीं हो रही 1000 दें या 2000, तो फिर इस सूरत में महरे मिसल मिलेगा औरत को। तो अगर उसी शहर में रखा तो फिर वही 1000, और अगर दूसरे शहर मुंतकिल किया तो फिर 2000 नहीं होगा बल्कि महरे मिसल होगा। अलबत्ता ये महरे मिसल जो है 1000 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम से कम 1000 देने का तो खावंद खुद इकरार कर चुका है, और 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि औरत भी ज्यादा से ज्यादा 2000 पर राजी हो चुकी है, तो लिहाजा जायद गोया वो खुद ही कमी कर चुकी है। तो इमाम साहब के नजदीक पहली शर्त मुंजिज और दूसरी मुअल्लक, जबकि साहिबैन के नजदीक दोनों शर्तें जायज हैं और दोनों मुअल्लक हैं। जब दोनों मुअल्लक हैं तो दो तस्मिया पाए ही नहीं जा रहे, जो शर्त भी वो पूरी कर देगा वही वाला तस्मिया आ जाएगा, तो एक वक्त में एक ही तस्मिया आएगा, लिहाजा शर्तें भी जायज और ये तस्मिया भी जायज। जो शर्त वो पूरी करेगा उसी के मुताबिक महर औरत को दे देगा। अगर शहर में रखता है तो 1000 दे देगा, और अगर शहर से मुंतकिल करता है तो 2000 महर दे देगा। जबकि इमाम जुफर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि दोनों शर्तें जो हैं फासिद हैं। वो फरमाते हैं जब महर के अंदर माल को भी जिक्र करें और माल के साथ कोई शर्त जिक्र की जाए तो असल महर वो माल हुआ करता है, शर्त को वैसे ही तरगीब के तौर पर जिक्र किया जाता है। तो यहां पर भी जब दो शर्तें जिक्र की तो दोनों शर्तें तरगीब के लिए हैं, लेकिन माल तो दो जिक्र हो गए, तो इब्तिदा से ही तस्मिया के अंदर जहालत आ गई कि 1000 होगा या 2000 होगा, तो लिहाजा इस सूरत में वो भी फरमाते हैं कि महरे मिसल देना पड़ेगा। जब तस्मिया में फसाद आ जाए तो क्या देना पड़ता है, महरे मिसल, तो वो फरमाते हैं यहां महरे मिसल आ जाएगा, चाहे शहर में रखे चाहे शहर से मुंतकिल करे, हर हाल में महरे मिसल ही आएगा, लेकिन ये महरे मिसल 1000 से कम नहीं होना चाहिए और 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने एक मसला जिक्र फरमाया था कि किसी शख्स ने किसी औरत से निकाह किया और महर की तायीन नहीं की कि मैं तुमसे इस गुलाम पर निकाह करता हूं या इस गुलाम पर, तो दो अलग अलग गुलाम जिक्र कर दिए। तो आप देखो महर मुतायन नहीं है, और फिर जब देखा तो उन गुलामों में से एक अदना है यानी मसलन 5 लाख का है और दूसरा आला है मसलन 10 लाख का है। तो फिर इस सूरत में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि महरे मिसल को फैसल बनाएंगे, महरे मिसल के लिए फैसला किया जाएगा क्योंकि तस्मिया के अंदर फसाद आ गया, तायीन नहीं है तो महरे मिसल देंगे। तो महरे मिसल अगर दोनों के दरमियान हुआ, मसलन महरे मिसल इस औरत का 7 लाख है, तो फिर यही महरे मिसल औरत का हक हो जाएगा। और अगर महरे मिसल वो अदना गुलाम से कम है तो फिर वो अदना गुलाम ही औरत को दे देंगे क्योंकि कम से कम उसका एतराफ खावन कर चुका है। और अगर महरे मिसल जो है वो आला गुलाम से ज्यादा हुआ तो फिर आला वाला दे देंगे, ज्यादती नहीं देंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो आला पर औरत खुद राजी हो चुकी है, ये मालूम हुआ उससे जो जायद है वो उसने खुद उसमें कमी कर दी है। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इन तमाम सूरतों के अंदर वो नाकिस और अदना गुलाम है वही महर होगा, चाहे महरे मिसल जो है वो इन दोनों के बीच हो या कम हो दोनों से या दोनों से ज्यादा हो। तीनों सूरतों में वो फरमाते हैं जो अदना गुलाम है वो ही देना पड़ेगा क्योंकि वो अकल है और अकल का होना तो यकीनी है, जबकि जायद के अंदर शक आ गया कि ये होना चाहिए महर या नहीं। तो सहमैन फरमाते हैं क्योंकि कम जो है वो तो यकीनी है, अकल जो है वो तो यकीनी है, लिहाजा वो ही महर बनेगा तीनों सूरतों में। और मैंने आपको ये भी बतलाया था कि इमाम साहब के नजदीक निकाह के अंदर असल में महरे मिसल होता है, हां, और महरे मिसल जो है उसको छोड़ दिया जाता है मुसम्मा की वजह से, क्योंकि जब मियां बीवी खुद एक चीज पर राजी हो गए हैं तो फिर वही मुसम्मा आ जाएगा, महरे मिसल नहीं आएगा। लेकिन ये उस वक्त होगा जब मुसम्मा सही तो हो, लेकिन यहां तो मुसम्मा ही फासिद है, तायीन नहीं है, इसलिए शुरू से ही क्या आ जाएगा, महरे मिसल आ जाएगा। लेकिन यह महरे मिसल औकस गुलाम से कम और अरफा गुलाम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि साहिबैन के नजदीक असल जो है वो मुसम्मा है, लिहाजा जब मुसम्मा हो तो महरे मिसल की तरफ नहीं जाएंगे। और यहां पर मुसम्मा को वाजिब करना मुमकिन भी है कि अकल वो तो यकीनी है लिहाजा उसी को वाजिब करार दे दिया जाए, लेकिन अगर इसी सूरत में खावंद ने सोहबत से पहले तलाक दे दी तो फिर बिल इत्तेफाक तीनों आइमा के नजदीक जो औकस है उसका निसफ देना पड़ेगा। तो साहिबैन की बात उनके जाब्ते के मुताबिक है, उन्होंने भी कहा था कि महार ये औकस या अदना गुलाम आएगा और सोहबत से पहले तलाक दी तो उसी मुकर्रा महर का निसफ दिया जाता है, तो निसफ औकस उनके नजदीक आएगा और जाब्ते के मुताबिक भी यही बनता है। जबकि इमाम साहब पर एतराज होता है कि आपने तो महरे मिसल को फैसल बनाया था, उसके जरिए फैसला किया था, और जहां महरे मिसल आ रहा हो वहां सोहबत से पहले तलाक दी जाए तो मुता आया करता है। तो इमाम साहब की तरफ से जवाब दिया साहिब हिदाया ने कि हां वाकई इस मसले के अंदर मुता आना चाहिए, असल मुता ही है, लेकिन खावंद कम से कम औकस का खुद इकरार कर चुका है, तो जितना कम से कम जिसका उसने इकरार किया है उसका निसफ ही औरत को दिलाया जाएगा, और आदतन ये मुता से ज्यादा होता है और इस ज्यादती का खावंद खुद एतराफ कर चुका है, लिहाजा ये निसफ औकस उसको दिलाया जाएगा। लेकिन अगर मुता निसफ औकस से ज्यादा है फिर मुता ही देना पड़ेगा, वही वाजिब है क्योंकि इस मकाम पर असल क्या है, मुता है भाई। फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया था कि अगर किसी शख्स ने किसी औरत से निकाह किया और कोई हैवान जिक्र किया लेकिन उसकी सिफत जिक्र नहीं की कि आला होगा या अदना होगा या मुतवस्सित होगा, यह जिक्र नहीं किया, तो इस सूरत में मुतवस्सित हैवान आ जाएगा और खावंद को इख्तियार होगा चाहे वो ही वाला मुतवस्सित हैवान दे दे या उसकी कीमत दे दे, इसलिए क्योंकि मुतवस्सित का पता ही कीमत से चलता है, लिहाजा इस एतबार से कीमत भी असल है, लेकिन जिक्र तो हैवान को किया था और तो इस एतबार से हैवान भी असल है, तो दोनों में से जिस पर चाहे खावन अमल कर सकता है। बात समझ में आ गई। तो देखो इस निकाह के अंदर महर के अंदर कुछ जहालत आ गई थी। हैवान तो जिक्र किया था कि गाय दूंगा या ऊंट दूंगा या घोड़ा दूंगा, लेकिन उसकी सिफत जिक्र नहीं की थी। लेकिन निकाह की बुनियाद नरमी पर होती है, लिहाजा जहालत यसीरा को बर्दाश्त कर लिया जाएगा। लेकिन अगर जहालत फाहिशा आ जाए, मसलन कहा कि मैं आपको दाब्बा दूंगा यानी सवारी वगैरह का कोई जानवर दूंगा, तो अब इस सूरत में तो जींस का ही पता नहीं है, सवारी का जानवर तो घोड़ा भी हो गया, गधा भी हो गया, खच्चर भी हो गया। तो लिहाजा इस सूरत में ये जहालत फाहिशा है, और जब जहालत फाहिशा आ गई मुसम्मा के अंदर तो फिर वो नहीं आ सकता, तो फिर वहां महरे मिसल आ जाया करता है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह इसको कियास करते हैं बेअ पर, उनके नजदीक निकाह अक़्दे मुआवजा है, जैसे बेअ अक़्दे मुआवजा है। तो जो चीज बेअ के अंदर समन बन सकती है वो फरमाते हैं वही निकाह के अंदर महर भी बन सकती है। और बेअ के अंदर तो जहालत यसीरा भी बर्दाश्त नहीं की जाती, लिहाजा निकाह के अंदर भी जहालत यसीरा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेअ के अंदर अगर ऐसा हैवान जिक्र किया जिसकी सिफत जिक्र नहीं की, यानी उस हैवान की तायीन नहीं की, तो फिर इस सूरत के अंदर बेअ ही फासिद होती है, क्योंकि झगड़ा आएगा। मुश्तरी चाहेगा मुझे आला जानवर मिले और बाय चाहेगा उसको अदना जानवर दे दे, तो लिहाजा ये जहालत यसीरा भी बेअ में बर्दाश्त नहीं। जिस चीज में जहालत यसीरा हो वो बेअ में समन नहीं बन सकती। तो जब बेअ में वो समन नहीं बन सकती तो निकाह में वो महर भी नहीं बन सकती। तो वो फरमाते हैं दोनों सूरतों में महरे मिसल आएगा, चाहे जहालत यसीरा हो चाहे जहालत फाहिशा हो। और फिर हमने उसका जवाब दिया था कि निकाह में दोनों जिहतें हैं, बाज एतबार से देखें तो यह अक़्दे मुआवजा है, बाज एतबार से देखें तो यह अक़्दे मुआवजा नहीं है। वजह यह कि यहां पर खावंद माल दे रहा है गैर माल के बदले में, क्योंकि एक तरफ से अगर माल आ रहा है तो दूसरी तरफ से सिर्फ बुज़ा के मुनाफ़ा हैं भाई, और वो तो गैर माल है भाई। तो वही लिहाज देखें तो यह अक़्दे मुआवजा नहीं, और बाई लिहाज देखें कि कुछ ना कुछ हिवस तो आ रहा है तो बाई लिहाज यह अक़्दे मुआवजा है। तो हमने दोनों जिहतों का एतबार किया, इब्तिदान जो है हमने इसको गैर मुआवजा होने का एतबार किया, यानी खावंद खुद ही अपने ऊपर वैसे माल लाजिम कर रहा है, कोई अक़्दे मुआवजा यहां पर नहीं है। जब खुद इब्तिदान अपने ऊपर वैसे तबर्रुअन माल लाजिम कर रहा है तो जहालत यसीरा बर्दाश्त कर ली जाएगी, जैसे कि दियत और इकरार के अंदर होता है। दियत के अंदर 100 ऊंट तो जिक्र है लेकिन उनकी सिफत शरीयत ने जिक्र नहीं की भाई। इसी तरह इकरार कोई करता है कि मैंने जैद की बकरी देनी है या गाय देनी है और उसकी सिफत जिक्र नहीं की तो वो भी जायज है। तो लिहाजा जैसे दियत और इकरार के अंदर नफ्स जहालत आ रही है लेकिन फिर भी जायज है, इसी तरह यहां निकाह के अंदर भी अगर नफ्स जहालत यानी जहालत यसीरा आ जाएगी तो यह जायज होगा। और इंतहा के एतबार से हमने इस निकाह के अक़्दे मुआवजा होने का एतबार किया। जब अक़्दे मुआवजा होने का एतबार किया तो हमने शर्त लगा दी कि मुसम्मा ऐसा माल हो जिसका वसत मालूम हो सके, जिसके वसत का पता चल सके, ताकि मियां बीवी दोनों की रियायत हो सके। तो आला भी वाजिब नहीं किया जाएगा वरना तो खावंद का नुकसान होगा, और अदना भी वाजिब नहीं किया जाएगा वरना तो बीवी का नुकसान होगा। तो फिर मुतवसित चीज को वाजिब कर दिया जाएगा क्योंकि इसमें दोनों की रियायत है। तो अक़्दे मुआवजा होने के एतबार से हमने यह शर्त लगा दी, और यह उसी वक्त होगा जब जींस का पता हो। जब जींस का पता हो फिर ही मुतवसित का पता चल सकता है, क्योंकि जींस के अंदर चीजें उमदा भी होती हैं, अदना भी होती हैं और मुतवसित भी होती हैं। और नीज ये जो मुतवसित है ये दोनों से हिस्सा लेता है, आला से भी और अदना से भी। मुतवसित की निस्बत अदना की तरफ करें तो इस एतबार से मुतवसित आला हुआ, और मुतवसित की निस्बत आला की तरफ करके देखें तो मुतवसित उससे अदना है। तो मुतवसित आला भी है बाज एतबार से और अदना भी है बाज एतबार से, तो इसमें दोनों से हिस्सा आ गया, दोनों की रियायत हो गई भाई। जबकि अगर जिन्स ही मजहूल है तो फिर उस सूरत में वसत का पता नहीं चल सकता, इसलिए क्योंकि जिन्सों के मकासिद अलग अलग हैं। बास जिन्सें जो हैं उनमें गोश्त मकसूद होता है, बास के अंदर सवारी वगैरह मकसूद होती है, बास में और मुनाफा मकसूद होते हैं, तो जब इनके मकासिद ही अलग अलग हैं तो वसत का पता नहीं चल सकता। एक मकसद होता फिर भी वसत का कुछ ना कुछ पता चल सकता था। बात समझ में आ रही है? और फिर उसके बाद साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया था कि ये जो कपड़े हैं ये कई जिन्सें शुमार होती हैं, क्योंकि कपड़े मुख्तलिफ किस्म के हैं, उनके मकासिद मुख्तलिफ हैं। कोई सर्दी के कपड़े हैं, कोई गर्मी के कपड़े हैं, कोई जेबो जीनत वाले कपड़े हैं वगैरह, तो ये कपड़ा कई जिन्सें शुमार होता है। लिहाजा सिर्फ कपड़ा कहा जाए कि मैं तुम्हें 50 कपड़े के थान दूंगा तो ये जहालत फाहिशा है, क्योंकि जींस का ही पता नहीं है किस किस्म के कपड़े दोगे, उसकी नौ ही बयान नहीं की। लिहाजा इस सूरत में माहरे मिसल आ जाएगा। लेकिन अगर कपड़े की नौ बयान कर दी कि मसलन हरवी कपड़ा मैं दूंगा फला इलाके का या फला किस्म का कपड़ा दूंगा, तो फिर इस सूरत में यह तस्मिया सहीह है और उसी किस्म का मुतवस्सित दर्जे वाला कपड़ा आ जाएगा। तो कपड़ा जो है ज़वातुल क़ियम में से है। मैंने बताया था कि चीजें दो किस्म पर हैं, कुछ मिसलियात हैं जिनका मिसल बाजार से मिल जाता है और बाकी ज़वातुल क़ियम हैं, कीमत वाली हैं। और मिसलियात जो हैं वो तीन चीजें हैं, मौजूनात, मकीलात और मादूदात मुतकारिबा। तो ये कपड़ा जो है ये ज़वातुल क़ियम में से है, और ज़वातुल क़ियम वो हैं जिनका मिसल बाजार से नहीं मिलता। और ज़वातुल क़ियम के अंदर ज़ाब्ता ये है कि अगर जिन्स और नौ बयान कर दी तो फिर इस सूरत में वो मुतवस्सित दर्जे वाला आ जाएगा, और वहां खावन को इख्तियार होता है, वो चाहे कीमत दे और चाहे वही चीज लाकर दे दे मुतवस्सित दर्जे वाली। और साहिब हिदाया ने फिर ये भी बतलाया कि कपड़ा ज़वातुल क़ियम है अगर उसकी औसाफ में खूब मुबालगा भी कर दिया जाए कि हर कपड़ा इतने गज लंबा होगा और इतने गज चौड़ा होगा और इस तरह का होगा, और भी खूब सिफात जिक्र कर दी, फिर भी ये ज़वातुल क़ियम ही में से रहेगा, ये मिसलियात में से नहीं बनेगा। लिहाजा खावंद को मजबूर नहीं किया जा सकता कि कपड़ा ही देना पड़ेगा, बल्कि उसको इख्तियार रहेगा, वो चाहे कीमत दे और चाहे उसी किस्म का मुतवस्सित कपड़ा दे भाई। जबकि मकीलात और मौजूनात, उनके अंदर भी अगर मकीलात और मौजूनात का वसफ बयान कर दिया तो फिर इस सूरत में वो ही देना पड़ेगा, वही, क्योंकि मकीलात और मौजूनात किसी के जिम्मे में रह सकते हैं तो फिर वही देना पड़ेगा। लेकिन अगर मकीलात और मौजूनात जो हैं उनका वसफ बयान नहीं किया कि आला होगा या अदना होगा या मुतवस्सित होगा, तो ये भी मुतवस्सित दर्जे वाले आ जाएंगे, और फिर वहां खावंद को इख्तियार होगा चाहे कीमत दे और चाहे मुतवस्सित दर्जे की वही मकीली या मौजूनी चीज दे। और फिर यह भी बतलाया अगर एक मुसलमान शराब या खिंजीर पर निकाह करता है तो फिर इस सूरत में निकाह हो जाएगा, अलबत्ता यह शर्त फासिद है, यह जो शराब या खिंजीर के कबूल करने की शर्त लगाई, और शर्त फासिद से निकाह फासिद नहीं होता, तो निकाह सही हो जाएगा और शर्त फासिद है भाई। और इस सूरत में औरत को महरे मिसल मिलेगा क्योंकि तस्मिया सही नहीं है, और जब तस्मिया सही ना हो तो फिर महरे मिसल दिया जाता है। अब आइए आज के सबक पर। फइन तज़व्वजा इम्रअतन अला हाज़ा अद्दन मिनल खल्लि फइज़ा हुवा खम्रुन फलहा महरु मिस्लिहा इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह। भाई ये मुश्किल मसला है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। सूरत मसला यह है, एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और कहा यह जो सामने मटका पड़ा हुआ है सिरके का, तो ये जो मटका सामने सिरके से भरा हुआ पड़ा है ये मैं तुम्हें महर के तौर पर दूंगा, और औरत इस पर राजी हो गई, निकाह हो गया। अब बाद में देखा गया तो उस मटके के अंदर सिरका नहीं था, शराब थी। तो देखो जिक्र किया था माल को, सिरका क्या है, माल, और शराब वो तो मुसलमानों के नजदीक माल ही नहीं, कुफार के नजदीक वो माल है, मुसलमानों के नजदीक माल नहीं। मुसलमान के लिए शराब का न तमल्लुक जायज है न तमलीक, न वो खुद मालिक बन सकता है न किसी दूसरे को मालिक बना सकता है। तो जिक्र की थी हलाल चीज और निकली क्या, हराम चीज। یا دوسری صورت لے لیں، دوسری صورت لے لیں، ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور کہا یہ جو سامنے غلام ہے میں تمہیں مہر کے طور پر یہ غلام دوں گا، تو نکاح کر لیا، بعد میں پتا چلا وہ تو غلام ہے ہی نہیں، وہ تو آزاد آدمی ہے۔ تو دیکھو بتلایا کیا تھا، غلام ہے یعنی مال ہے، اور بعد میں آزاد نکلا یعنی غیر مال نکلا، کیونکہ آزاد آدمی تو مال نہیں۔ تو اس صورت میں یاد رکھو ہمارے تینوں ائمہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان مسئلوں کے اندر، یاد رکھو تفصیل بھائی۔ یہاں اس میں اشارہ کے ساتھ تسمیہ جمع ہو رہا ہے، اشارہ بھی خاوند کر رہا ہے یہ جو مٹکا ہے، اور تسمیہ بھی ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو مٹکا سرکے کا ہے بھائی۔ تو دیکھا اشارہ بھی کیا اور تسمیہ یعنی نام بھی ذکر کیا کہ یہ سرکا ہے۔ دوسری صورت میں دیکھو غلام کی طرف اشارہ کیا، یہ والا غلام، تو اشارہ بھی کیا کہ یہ والا، اور ساتھ تسمیہ بھی ہے کہ غلام ہے یہ۔ تو امام صاحب کا ضابطہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ جب اس میں اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں تو اس میں اشارہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ کس کا؟ اس میں اشارہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو لہذا یہاں پر اشارے کا اعتبار ہے، جو مشار الیہ ہے وہی مہر بنے گا، تسمیہ یعنی نام جو سرکے کا ذکر کیا اس کو نہیں دیکھیں گے، جو بھی مشار الیہ ہے وہی مہر بنے گا، اور وہ تو مال نہیں وہ تو شراب ہے، لہذا اس صورت میں مہر مثل آ جائے گا جی۔ یا اسی طرح کہا یہ والا غلام تمہیں مہر میں دوں گا، تو اس میں اشارہ بھی ہے اور تسمیہ بھی ہے، تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں اشارے کا اعتبار کیا جائے گا، اور اشارہ اس کی طرف کیا ہے یہی مہر بنے گا، لیکن یہ تو آزاد آدمی ہے یہ تو مہر بن ہی نہیں سکتا، تو پھر اس صورت میں مہر مثل آ جایا کرتا ہے۔ جب اشارے کے ساتھ تسمیہ جمع ہو جائے تو امام صاحب کے نزدیک کس کا اعتبار ہے؟ اشارے کا اعتبار ہے، یہ جو مشار الیہ ہے یہی مہر بنے گا، اور مشار الیہ تو مہر بن ہی نہیں سکتا دونوں صورتوں میں، ایک میں شراب ہے ایک میں آزاد آدمی ہے، تو پھر اس صورت میں پھر مہر مثل لا جائے گا دونوں صورتوں میں۔ کس کے نزدیک؟ امام صاحب کے نزدیک۔ تو ضابطہ کیا ہوا امام صاحب کے نزدیک؟ کہ جب اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں تو کس کا اعتبار ہے؟ اشارے کا اعتبار ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تسمیہ اور اشارہ جمع ہو جائیں تو پھر تسمیہ کا اعتبار ہے جی۔ کس کا اعتبار ہے؟ تسمیہ کا اعتبار ہے۔ لہذا جب خاوند نے کہا یہ جو سرکے کا مٹکا ہے یہ تمہیں بطور مہر کے دوں گا، تو ذکر کس کو کیا؟ سرکے کو، سرکا، تو تسمیہ کا اعتبار ہے، تو سرکا جو ہے وہ مہر بن جائے گا، لیکن یہ تو شراب ہے تو پھر اس سرکے کا مثل دینا پڑے گا، تو اس سرکے کا مثل دینا پڑے گا، کیونکہ سرکا مثلیات میں سے ہے بھائی۔ یاد رکھو مثلی چیز میں اس کا مثل آیا کرتا ہے، کسی نے کسی کی 100 من گندم ضائع کر دی تو اس پر اسی کے مثل 100 من گندم واجب ہوگی، وہ اس کو لا کر دینا پڑے گی، جبکہ زوات القیم میں اس چیز کی قیمت آیا کرتی ہے۔ کسی نے کسی کا جانور ضائع کر دیا، ہلاک کر دیا، تو پھر اس جانور کا مثل نہیں واجب ہوگا، کیونکہ جانور کا تو مثل نہیں مل سکتا بھائی، تو وہاں پر پھر اس کی قیمت واجب ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس نے ذکر کس کو کیا تھا؟ سرکے کو، اور سرکہ تو مثلیات میں سے ہے، لہذا اس کا مثل لا کر دینا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طرح جب آزاد آدمی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ والا غلام میں بطور مہر کے دوں گا، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تسمیہ کا اعتبار ہے، اور تسمیہ نام کیا ذکر کیا؟ یہ والا غلام۔ تو دیکھو غلام جو ہے وہ تو زوات القیم میں سے ہے، تو اسی آدمی کو اگر یہی آدمی غلام ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہوتی؟ وہ قیمت لگا کر وہ عورت کو مہر کے طور پر ملے گی جی۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں تو کس کا اعتبار ہے؟ تسمیہ کا اعتبار ہے، اور تسمیہ تو سرکے کا ہوا تھا، لہذا اسی کے ہم وزن سرکہ دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح اشارہ اور غلام کا لفظ جمع کیا تو غلام کے لفظ کا اعتبار ہے، لہذا یہی آدمی اگر غلام ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہوتی؟ وہی قیمت جو ہے اب اس خاوند پر لازم ہو جائے گی۔ क्योंकि जो जिक्र किया है, जिसका नाम जिक्र किया है वही महर होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक मुशारुन इलैह जो है वो महर होगा, लेकिन उसमें तो महर बनने की सलाहियत नहीं क्योंकि वो माल ही नहीं, तो महरे मिसल आ जाएगा। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक तस्मिया का एतबार है, जिसका नाम जिक्र किया है वो महर बनेगा, तो अगर वो मिसलियात में से है तो उसका मिसल देना पड़ेगा, और अगर वो ज़वातुल क़ियम में से है तो उसकी कीमत लगाकर कीमत दी जाएगी। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब इशारा और तस्मिया जमा हो जाएं तो फिर देखा जाएगा कि मुशारुन इलै और मुसम्मा की जिंस एक है या अलग अलग। भाई इशारा कर दिया तो जिस चीज की तरफ इशारा किया वो ही मुशारुन इलै, और जिस चीज का नाम जिक्र किया तो वो चीज हुई मुसम्मा। तो इशारा और तस्मिया जमा हो रहे हैं, यानी मुशारुन इलै और मुसम्मा जमा हो रहे हैं। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं मुशारुन इलै और मुसम्मा की अगर एक ही जींस हुई, अगर दोनों की एक ही जींस हुई तो फिर मुशारुन इलै का एतबार है। तो फिर और अगर मुशारुन इलै और मुसम्मा की जींसें अलग अलग हैं तो फिर इस सूरत में तस्मिया का एतबार है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का क्या जाब्ता हुआ कि अगर मुशारुन इलै और मुसम्मा की जिंस एक ही है तो फिर मुशारुन इलै का एतबार है, यानी इशारे का एतबार है, यानी जिस चीज की तरफ इशारा किया है वो ही महर बनेगा। और अगर मुशारुन इलै और मुसम्मा की जिंस अलग अलग है तो फिर मुसम्मा का एतबार है, जिसका नाम लिया था वो महर बनेगा। भाई इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का मजहब मैंने बयान कर दिया, तो यहां अब आपको पहले जींस की पहचान होनी चाहिए, फिर बात आपको पूरी समझ में आएगी। तो जींस को समझ लें, याद रखिए हमारे तीनों अइम्मा जींस की अलग अलग तारीफ करते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जींस वो है जो मकूलुन अला कसीरीना मुख्तलिफीना फिसूरति वल माना जमीआ, यानी जींस वो चीज है मकूलुन जो बोली जाती है अला कसीरीना ऐसे बहुत सी चीजों पर, मुख्तलिफीना जो जो मुख्तलिफ हैं, फिर सूरति वल माना जमीआ सूरत और माना, यानी सूरत और मकसद दोनों के एतबार से, वो चीज जो और चीजों से सूरत में भी मुख्तलिफ हो और मकासिद के और मकासिद के अंदर यानी मुनाफे के अंदर भी मुख्तलिफ हो, ये बाकी चीजों से अलग एक जिंस है। तो जिंस के अंदर क्या जरूरी है, इसकी सूरत भी अलग होनी चाहिए और इनके मुनाफे और मकासिद भी अलग होने चाहिए। अगर सूरत एक जैसी है सिर्फ मुनाफे अलग हैं, या मुनाफिया एक जैसे हैं सूरतें अलग हैं, नहीं, दोनों चीजें अलग हों फिर अलग जिंस शुमार होगी। सूरत भी अलग होनी चाहिए और मुनाफिया भी अलग होने चाहिए। बात समझ में आ गई। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिंस जो है मकूलुन अला कसीरीना मुख्तलिफीना फिल अहकामी, कि जिंस वो चीज है जो बोली जाती है ऐसे कसीरीन पर जो मुख्तलिफ हो हैं अहकाम में, यानी जो दूसरी चीजों से अहकाम के अंदर मुख्तलिफ हैं, तो वो अहकाम पे नजर करते हैं जिंस के अंदर। चीजों के हुक्म अलग अलग हैं तो वो अलग जिंसें शुमार होंगी, और अगर हुक्म एक जैसे हैं तो फिर एक ही जिंस शुमार होंगे। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जींस के अंदर मकासिद का एतबार करते हैं, तो वो फरमाते हैं जींस जो है वो चीज है मकूलुन अला कसीरीना मुख्तलिफीना फिल मकासिदी, वो कसीर चीजें जो मुख्तलिफ हैं फिल मकासिदी, मकासिद यानी मुनाफे में। बात समझ में आ गई, फिर दोहरा लें, इमाम साहब के नजदीक जींस किसे कहते हैं, हुआ मकूलुन अला कसीरीना मुख्तलिफीना फिसूरती वल माना, सूरती वल माना जमीआ, जमीआ की कैद लगाएं या ना लगाएं, कुल्लियुन मकूलुन अला कसीरीना मुख्तलिफीना फिसूरती वल माना, वो कसीरीन जो सूरत और माना यानी सूरत और मकासिद में दूसरों से मुख्तलिफ हों वो अलग जींस हैं। तो सूरत भी अलग होनी चाहिए और मकसद और मुनाफे भी अलग होने चाहिए, फिर ही अलग जिंस शुमार होगी। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक जिंस क्या है, वह कुल्लियुन मकूलुन अला कसीरीना मुख्तलिफीना फिल अहकामी, कि वो कसीरीन जो हैं जो अहकाम के अंदर और चीजों से मुख्तलिफ हैं वो एक जिन्स शुमार होंगे, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक वह कुल्लियुन मकूलुन अला कसीरीना मुख्तलिफीना फिल मकासिदी। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक फिल अहकाम, अहकाम की बात की है उन्होंने, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मुख्तलिफ होंगे फिल मकासिद, मकासिद यानी मुनाफिया के अंदर। तारीफ समझ में आ गई। तो अब आइए हम देखते हैं कि ये दो सूरतें जिक्र की, इशारा किया सिरके की तरफ और निकली शराब, या इशारा किया गुलाम की तरफ और निकला आजाद आदमी। तो अब हम देखते हैं कि ये एक जिन्स है या अलग अलग जिन्स हैं। सबसे पहले इमाम साहब का मजहब देख लेते हैं। भाई देखिए, उस शख्स ने क्या कहा है, ये सिरका महर होगा। अब इशारा भी है और तस्मिया भी है, इशारा भी है और तस्मिया भी है। तो तस्मिया किसका है, सिरके का, और इशारा किसकी तरफ है, शराब की तरफ। तो शराब और सिरका ये दोनों एक जिन्स हैं या अलग जिन्स हैं? तो याद रखो, इमाम साहब के नजदीक एक ही जिन्स हैं, इमाम साहब के नजदीक एक ही जिन्स है। वही जिन्स वाली तारीफ लागू करो, इमाम साहब के नजदीक एक जिन्स किसे कहते हैं, कि जिसकी सूरत और मनाफे दूसरी चीजों से मुख्तलिफ हैं, यानी जिन्स वालों की सूरत और मनाफे एक जैसे होंगे। तो यहां पर देखो, सिरके और शराब दोनों के मनाफे तो अलग अलग हैं। सिरका तो खाने वगैरह में इस्तेमाल होता है, और शराब वो तो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो मनाफे अलग हैं, लेकिन सूरत तो एक जैसी है। याद रखो, यही अंगूर का रस, इसको खास तरीके से रखा जाए तो ये शराब बन जाता है, और इसी अंगूर के रस को खास तरीके से रखा जाए तो ये सिरका बन जाता है, और यही अगर शराब बन जाए इसको भी फिर सिरके में बदला जा सकता है। कहते हैं कि अगर इसी शराब को खास तरीके से धूप में रख दिया जाए या इसके अंदर नमक वगैरह डाल दिया जाए तो फिर यह भी आहिस्ता आहिस्ता सारी सिरके में बदल जाएगी। तो देखो, सूरत तो दोनों की एक जैसी है, अलबत्ता मनाफे अलग हैं, लेकिन इमाम साहब फरमाते हैं सूरत और मनाफे दोनों अलग होंगे तो फिर अलग जिन्स शुमार होगी। तो यहां तो सिर्फ मनाफे अलग हैं, सूरत अलग नहीं, तो लिहाजा ये एक ही जिन्स शुमार होंगे। इसी तरह आजाद आदमी और गुलाम, इनके भी मनाफे एक जैसे हैं। जो काम आजाद आदमी कर सकता है वही सारे काम गुलाम भी कर सकता है, तो दोनों के मनाफे तकरीबन एक जैसे हैं। हां, थोड़ा सा फर्क है कि आजाद आदमी कुछ तसर्रुफात कर सकता है और गुलाम वो तसर्रुफात नहीं कर सकता। बाकी काम काज के एतबार से, मनाफे के एतबार से आजाद और गुलाम आदमी एक जैसे हैं। जो काम आजाद आदमी कर सकता है वही काम गुलाम भी कर सकता है, तो दोनों एक ही जिन्स हैं। तो इमाम साहब के नजदीक दोनों क्या हुए, सिरका और शराब भी एक जिन्स, और गुलाम और आजाद आदमी भी एक जिन्स। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक, उनके नजदीक अहकाम के बदलने से जिन्स बदल जाएगी, तो लिहाजा उनके नजदीक शराब और सिरका अलग अलग जिन्से हैं, क्योंकि शराब के अहकाम और हैं वो हराम है, और सिरके के अहकाम और हैं वो हलाल है भाई, तो लिहाजा ये दो अलग अलग जिन्से शुमार होंगी। जबकि आजाद आदमी और गुलाम, ये भी उनके नजदीक दोनों अलग अलग जिन्से हैं, गुलाम के अहकाम और हैं, आजाद आदमी के अहकाम और हैं। आजाद आदमी को तसर्रुफात की इजाजत होती है, गुलाम को तसर्रुफात की इजाजत नहीं होती। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक दोनों मसलों में मुशारुन इलै और मुसम्मा, उनकी जिन्स अलग अलग है। इमाम साहब के नजदीक दोनों मसलों में मुशारुन इलै और मुसम्मा की जिन्स एक ही है, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जो हैं वो मनाफिया का एतबार करते हैं, और मनाफिया के एतबार से देखा जाए तो सिरके के मनाफिया और हैं, वो खाने पीने वगैरह में इस्तेमाल होता है, और शराब जो है उसके मनाफिया और हैं, वो तो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक ये दोनों अलग अलग जिन्से हैं, क्योंकि मनाफिया अलग अलग हैं। और जबकि आजाद आदमी और गुलाम, ये दोनों जो हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक एक ही जिन्स हैं, क्योंकि मनाफे इनके एक जैसे हैं। जो काम आजाद आदमी कर सकता है वो गुलाम भी कर सकता है। थोड़ा बहुत फर्क है तसर्रुफात का, लेकिन बाकी काम काज वगैरह के एतबार से इनके मनाफे तकरीबन एक जैसे हैं। तो लिहाजा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक ये एक ही जिन्स हैं दोनों। بات سمجھ میں آ گئی، پھر دوہرا لیں، امام صاحب کے نزدیک مشار الیہ اور مسمع دونوں مثالوں میں ایک ہی جنس ہیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مشار الیہ اور مسمع دونوں مثالوں میں الگ الگ جنسیں ہیں کیونکہ احکام الگ الگ ہیں، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک شراب اور سرکے کے مسئلے میں مشار الیہ اور مسمع کی جنس الگ الگ ہے کیونکہ منافع الگ ہیں، اور غلام اور آزاد آدمی کے مسئلے میں مشار الیہ اور مسمع ایک ہی جنس ہے کیونکہ دونوں کے منافع ایک جیسے ہیں. تو اب یہ ضابطہ پھر دوہرا لیں، ضابطہ پھر دوہرا لیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں تو چاہے جنسیں الگ ہوں چاہے جنس ایک ہی ہو، ہر حال میں اشارے ہی کا اعتبار ہے، ہر حال میں اشارے کا اعتبار ہے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جب اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں تو چاہے جنسیں الگ ہوں چاہے جنس ایک ہو، تسمیہ کا اعتبار ہے. کس کا؟ تسمیہ کا اعتبار ہے. امام صاحب کے نزدیک اشارے کا اعتبار اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تسمیہ کا اعتبار، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں تفصیل ہے. اگر اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں اور مشار الیہ اور مسمع کی جنس ایک ہو تو پھر اشارے کا اعتبار ہے، اور اگر مشار الیہ اور مسمع کی جنسیں الگ الگ ہوں تو پھر مسمع کا یعنی تسمیہ کا اعتبار ہے. ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ ذرا پھر اس پر آ جائیے، امام صاحب کے نزدیک کس کا اعتبار؟ اشارے کا. لہذا اس نے کیا کہا؟ یہ سرکہ میں تمہیں دوں گا مہر کے طور پر، تو اشارہ بھی کیا اور تسمیہ بھی ذکر کیا، لیکن امام صاحب کے نزدیک اعتبار کس کا ہے؟ اشارے کا. کس کا؟ تو جو مشار الیہ ہے وہی مہر بنے گا، اور مشار الیہ تو شراب ہے، وہ تو مہر بن نہیں سکتی، لہذا مہر مثل آ جائے گا. پھر دوسری صورت امام صاحب کے نزدیک، دوسری صورت کہ یہ جو غلام ہے میں اس پر تم سے نکاح کرتا ہوں، تو اب اشارہ بھی ذکر کیا اور تسمیہ بھی ذکر کیا، تو کس کا اعتبار؟ اشارے کا، یعنی جو مشار الیہ ہے وہی مہر بنے گا، اور مشار الیہ تو آزاد آدمی ہے، وہ تو مال ہے ہی نہیں، لہذا کیا آ جائے گا؟ مہر مثل آ جائے گا. توجہ ہے؟ تو امام صاحب کے نزدیک ہر صورت میں کس کا اعتبار؟ اشارے کا. جو بھی مشار الیہ ہوگا وہی مہر بنے گا، تسمیہ ساتھ جو ذکر کیا یعنی سرکہ ہے یا غلام ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک چاہے جن سے الگ ہو چاہے جن سے ایک ہی ہو، ہر حال میں تسمیہ ہی کا اعتبار ہے. تو نام تو اس نے سرکے کا ذکر کیا تھا، لہذا سرکہ ہی مہر بنے گا، تو اسی وزن کے برابر سرکہ دینا پڑے گا. اور غلام کو ذکر کیا تھا تو تسمیہ ہی کا اعتبار ہے، یہی آدمی اگر غلام ہو تو اس کی کیا قیمت ہوگی، اب وہ دینی پڑے گی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر دونوں کی جنس ایک ہو تو اشارے کا اعتبار ہے. تو جب اشارہ کیا یہ غلام میں تمہیں مہر میں دوں گا، تو دیکھو غلام اور آزاد آدمی دونوں کی جنس ایک ہے کیونکہ منافع ایک جیسے ہیں تقریباً. جب دونوں کی ایک جنس ہو تو اشارے کا اعتبار ہوگا، یعنی یہ جو مشار الیہ ہے یہی مہر بنے گا، لفظ غلام کو نہیں دیکھا جائے گا، تو یہ مشار الیہ یہی مہر بنے گا، لیکن یہ تو آزاد آدمی ہے یہ تو مہر بن نہیں سکتا، تو پھر مہر مثل آ جائے گا. تو اس میں وہ امام صاحب کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں، امام صاحب بھی فرماتے تھے مہر مثل آئے گا، امام محمد بھی کیا فرماتے ہیں؟ مہر مثل آ جائے گا. اور اگر مشار الیہ اور مسمع کی جنس الگ الگ ہو، جیسے شراب اور سرکہ، مشار الیہ کیا تھا؟ شراب. اشارہ کس کی طرف کیا ہے؟ شراب کی طرف، اور نام کیا ذکر کیا؟ سرکہ. تو مشار الیہ اور مسمع کی جنس الگ الگ ہے یہاں پر، کیونکہ دونوں کے منافع الگ ہیں بھائی. تو اس صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ مسمع کا اعتبار ہے، یعنی تسمیہ کا اعتبار ہے، اور تسمیہ تو کس کا کیا ہے؟ سرکے کا، لہذا سرکہ مہر بنے گا بھائی. تو اسی کے ہم وزن سرکہ اب دینا پڑے گا. تو اس شراب اور سرکے کے مسئلے میں وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں. بات سمجھ میں آ گئی، مسئلہ حل ہو گیا. اب دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى هَذَا الدَّنِّ مِنَ الْخَلِّ दन नुन, याद रखो दन नुन जो है ये मटके को कहते हैं, बड़ा मटका जो हो। फइन तज़व्वजा मरअतन अला हाज़ा दन मिनल खल्ली, अगर किसी शख्स ने निकाह किया किसी औरत से अला हाज़ा दन मिनल खल्ली, सिरके के इस मटके पर, कि मैं तुमसे निकाह करता हूं सिरके के इस मटके पर निकाह करता हूं। फईदा हुआ खमरुन, तो अचानक वो शराब निकली, फलहा महर मिसली हा इंदा अबी हनीफा तरहिमहुल्ला, तो उस औरत के लिए महर मिसल होगा इमाम साहब के नजदीक, क्योंकि मुशारुन इलैह ने महर बनना है जी। और मुशारुन इलैह तो शराब है। वकाला लहा मिसलु वज़्निही खल्ला, और साहिबैन फरमाते हैं कि इस औरत के लिए इसी का हम वजन जो है सिरका होगा, क्योंकि इमाम अबू यूसुफ के नजदीक तस्मिया का एतबार है और उसने तो सिरका जिक्र किया था, लिहाजा सिरका ही महर बनेगा। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, दोनों की जिन्स अलग अलग है और जब जिन्स अलग हो तो तस्मिया का एतबार होता है, लिहाजा सिरका महर बनेगा, और सिरका तो मौजूद नहीं, लिहाजा उसका हम वजन सिरका देना पड़ेगा। तो कहते हैं वकाला लहा मिसलु वज़्निही खल्ला, और साहिबैन फरमाते हैं उस औरत के लिए उसका हम वजन सिरका होगा। वह इन तज़व्वजहा अला हादल अब्दी, और अगर किसी शख्स ने निकाह किया किसी औरत से अला हादल अब्दी, इस गुलाम पर, यानी इशारा किया किसी गुलाम की तरफ, फईदा हुआ हुर्रुन, तो अचानक वो आजाद आदमी था, यजिबु महरुल मिसली, तो इस सूरत में महरुल मिसल वाजिब होगा, इंदा अबी हनीफता व मुहम्मदिन रहिमहुमुल्लाह, तरफेन के नजदीक। यहां इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इमाम साहब के साथ हैं, क्योंकि गुलाम और आजाद आदमी की जिन्स एक है, गुलाम और आजाद आदमी की जिन्स एक है, और उस सूरत में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मुशारुन इलैह का एतबार है, इशारे का एतबार है, और इमाम साहब के नजदीक तो वैसे ही इशारे का एतबार है हर हाल में। और मुशारुन इलैह तो कौन है, आजाद आदमी है, जिसकी तरफ इशारा किया है वो तो आजाद आदमी है, वही महर बनेगा, लेकिन वो तो महर बन नहीं सकता जी। तो यहां तस्मिया का एतबार नहीं बल्कि मुशारुन इलैह का एतबार है। तो जब वो महर बन नहीं सकता, वो आजाद आदमी जो मुशारुन इलैह है, तो फिर महरे मिसल आ जाएगा। तो कहते हैं यजिबु महरुल मिसल इंदा अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्ला, तो महरे मिसल वाजिब होगा तरफेन रहिमहुमल्ला के नजदीक। वकाल अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह तजिबुल कीमा, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कीमत वाजिब होगी, क्योंकि उनके नजदीक तो जाब्ता है कि तस्मिया का एतबार होगा, और इसने हादल अब्द, इसने अब्द यानी गुलाम को जिक्र किया है, तो यही आदमी अगर गुलाम फर्ज कर लिया जाए तो इसकी जो कीमत होगी वो लगाकर वो कीमत देनी पड़ेगी अब बतौर महर के। तो वो फरमाते हैं तजिबुल कीमत, उसकी कीमत वाजिब होगी, ली अबी यूसुफ रहमहुल्ला, अब दलील हर एक की जिक्र करेंगे, ली अबी यूसुफ रहमहुल्ला, इमाम यूसुफ रहमहुल्ला की दलील यह है कि अन्नहु अत्मअहा मालन, के खावंद ने इस औरत को लालच दिलाया है मालन, माल का। भाई इशारा तो कर रहा है शराब की तरफ, लेकिन लफ्ज तो जिक्र कर रहा है सिरके का, तो देखो सिरका तो माल है, शराब तो माल नहीं, लेकिन सिरका तो माल है। भाई वही जाब्ता जहन में रखें, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक हर हाल में किसका एतबार है, तस्मिया का। तो इस खामन ने इशारा तो शराब की तरफ किया है, लेकिन तस्मिया क्या जिक्र की, सिरका, और सिरका तो माल है, तो माल का लालच दिया औरत को, लिहाजा वही माल देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, आजाद की तरफ इशारा किया, ये वाला गुलाम तो तस्मिया का एतबार है, तो खावंद ने गुलाम यानी माल का नाम लेकर औरत को लालच दिलाया है, तो जिस चीज को जिक्र किया है, जिसका लालच दिलाया है, वो ही बतौर महर के आएगी। तो कहते हैं ली अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह की दलील यह है कि अन्नहु अत्मअहा मालन, के खावंद ने उस औरत को लालच दिलाया है माल का, वअजज़ा अन तस्लीमिही, और आजिज आ गया उसके सुपुर्द करने से, क्योंकि जिस चीज की तरफ इशारा किया है वो तो माल नहीं, तो उसके सुपुर्द करने से आजिज आ गया। फतजिबु कीमतुहु, तो उस चीज की कीमत वाजिब होगी अगर वो ज़वातुल क़ियम में से है, और मिसलुहु, या उस चीज का मिसल वाजिब होगा, इनकाना मिन ज़वातिल अम्साली, अगर वो चीज ज़वातुल अम्साल में से हुई यानी मिसलियात में से हुई। कमा इदा हलकल अब्दुल मुसम्मा कबल तस्लीम, जैसे कि मुकर्रा गुलाम हलाक हो जाए सुपुर्द करने से पहले। मसलन देखो, एक शख्स एक औरत से निकाह करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये वाला अपना गुलाम बतौर महर के दूंगा। दूसरी सूरत है, ये वाकई उसका गुलाम है, तो उसने क्या कहा, मैं तुम्हें ये वाला गुलाम बतौर महर के दूंगा। तो निकाह कर लिया, बाद में भी गुलाम औरत के हवाले नहीं किया था कि गुलाम हलाक हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तो खावन ने जिक्र माल का किया था और अब उसके अदा करने से आजिज आ गया, तो फिर उसकी कीमत आया करती है, तो यहां भी गुलाम की कीमत आएगी। तो जैसे इस मसले में गुलाम की कीमत आई है, गुज़श्ता दोनों मसलों के अंदर भी खावन वो माल सुपुर्द करने से आजिज आया है, तो अब उनकी कीमत या उनका मिसल देना पड़ेगा। कहते हैं कमा इदा हलकल अब्दुल मुसम्मा कबल तस्लीमी, जैसे कि मुकर्रा गुलाम हलाक हो जाए सुपुर्द करने से पहले, तो फिर उसकी कीमत आया करती है। वह अबू हनीफा रहिमहुल्लाह यकूलो, और इमाम साहब फरमाते हैं इजतमातिल इशारतु व तस्मियतु, कि इशारा और तस्मिया जमा हो गए, व तुअतबरुल इशारतु, तो इशारा ही मुअतबर है, लिकौनिहा अबलग फिल मकसूदी, बवजह इसके अबलग फिल मकसूद होने के, क्योंकि यह मकसूद के अंदर ज्यादा आला है। और मकसूद क्या है, कहते हैं वह हुआ तारीफ, वो पहचान करवाना है। याद रखो, तस्मिया से भी किसी चीज की पहचान होती है, इशारे से भी किसी चीज की पहचान होती है, लेकिन इशारा पहचान करवाने में आला है। यानी इशारे के जरिए जब किसी चीज की पहचान करवा दी जाए, वहां किसी किस्म का शक व शुबा नहीं रहता। मसलन ये सामने किताब पड़ी है, मैंने आपको कहा कि मैंने ये किताब आपको बेच दी, देखो इशारा करके कहा, जब इशारा कर दिया, अब ये किताब तमाम किताबों से मुमताज हो गई, आप समझ गए इसी किताब की बात हो रही है, किसी और किताब की बात नहीं हो रही। तो देखो इशारा सबसे ज्यादा तारीफ करवाता है, जबकि तस्मिया नाम जिक्र किया जाए उसमें उस दर्जे की पहचान नहीं। वजह यह कि क्योंकि बाज औकात किसी लफ्ज के हकीकी माना का इरादा होता है, तो कभी मजाजी माना का भी इरादा कर लिया जाता है। जैसे शेर, शेर जंगली दरिंदे का नाम है, लेकिन बहादुर आदमी को भी शेर कह देते हैं। तो देखो शेर का लफ्ज जो है, शेर का तस्मिया, इसके जरिए उस दर्जे की पहचान नहीं होगी कि पता नहीं ये किस माना का यह इरादा कर रहा है, हकीकी माना का इरादा कर रहा है या मजाजी माना का इरादा कर रहा है। तो पहचान तो तस्मिया के जरिए भी होगी, लेकिन वहां उस दर्जे की पहचान नहीं है जिस दर्जे की पहचान इशारा के अंदर है। इशारा तो इस तरह है जैसे किसी चीज पर आपने बाकायदा हाथ रखकर कह दिया कि ये चीज भाई, तो वो चीज सबसे मुमताज हो गई, पता चल गया इसी की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही। लेकिन तस्मिया में तो हकीकी माना के साथ मजाजी माना का भी एहतमाल होता है। मालूम हुआ पहचान करवाने में आला और अफजल क्या है, इशारा। तो तस्मिया के साथ जब इशारा जमा हुआ तो जो आला है यानी इशारा, उसका एतबार किया जाएगा। तो जब उसने कहा ये वाला सिरका, तो इशारा कर दिया, तो इशारे का एतबार है, तस्मिया का एतबार नहीं। तो जो भी मुशारू निले है उसी ने महर बनना है, लेकिन वो तो शराब निकली तो फिर महरे मिसल आएगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं अबू हनीफा रहमतुल्लाह यकूलू, इमाम साहब फरमाते हैं इजतमातिल इशारतु व तस्मियतु, के इशारा और तस्मिया जमा हो जाए, फतुअतबरुल इशारतु, तो इशारा का एतबार किया जाएगा, लिकौनिहा अबलग फिल मकसूदी, इसलिए क्योंकि इशारा जो है वो ज्यादा अफजल होता है, आला होता है, फिल मकसूदी, मकसूद के अंदर। भाई मकसूद क्या है, कहते हैं वह हुआ तारीफ, वो पहचान करवाना है, तो पहचान के अंदर इशारा अबलग है यानी अफजल आला है। फका अन्नहु तज़व्वज अला खमरिन औ हुर्रिन, तो गोया के इस शख्स ने निकाह किया है अला खमरिन औ हुर्रिन, शराब या आजाद आदमी पर, क्योंकि मुशारुन निले का एतबार है, और मुशारुन निले तो एक में शराब है और एक में आजाद आदमी है, तो गोया इसने शराब या आजाद आदमी पर ही निकाह किया है, लेकिन यह तो महर बन नहीं सकते, लिहाजा क्या आ जाएगा, महरे मिसल आ जाएगा। फकअन्नहु तज़व्वज अला खमरिन औ हुर्रिन, तो गोया के इसने निकाह किया है शराब या आजाद आदमी पर। व मोहम्मद रहमहुल्लाह यकूल, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल असलु, के ज़ाबता यह है कि अन्नल मुसम्मा इदा कान मिन जिन्सिल मुशारी इलैही, कि जब मुसम्मा जो है वो मुशारुन इलैही की जिन्स से हो, यतअल्लकुल अक्दु बिल मुशारी इलैही, तो याकद का ताल्लुक जो है मुशारुन इलैही से होता है, वही ज़ाबता जो इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने फरमाया, क्या कि इशारा और तस्मिया जब जमा हो जाए फिर देखा जाएगा कि मुशारुन इलैही और मुसम्मा की जिन्स एक है या अलग अलग। अगर दोनों की जिंस एक है तो किसका एतबार? मुशारुन इलैह का। जो मुशारुन इलैह है वही महर बनेगा। तो हादल अब्द कहा, और इशारा किसकी तरफ किया? आजाद आदमी की तरफ। तो गुलाम और आजाद आदमी की जिंस एक है, जब जिंस एक है तो एतबार किसका? मुशारुन इलैह का। और मुशारुन इलैह कौन है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? मुशारुन इलैह कौन है? आजाद है। मुसम्मा गुलाम है, नाम जिक्र गुलाम का कर रहा है, लेकिन मुशारुन इलैह आजाद आदमी है, वो ही महर बनेगा। लेकिन वो तो महर बन नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा? महरे मिसल। तो इस मसले में वो इमाम साहब के साथ हैं। तो क्या जाबता हुआ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का? मैं बार बार तकरार करवा रहा हूं इसीलिए कि मुश्किल मसला है। बातें समझ में आ रही हैं? जितना मुश्किल मसला है तो तकरार ज्यादा होगा, बात अच्छी तरह जहन नशीन हो जाएगी। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक जब दोनों की जिंस तो एक हो तो किसका एतबार? मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह जो है वो महर बनेगा, और वो तो आजाद आदमी है, लिहाजा महरे मिसल आ जाएगा। तो कहते हैं वह मोहम्मद रहमहुल्लाह यकूलु, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल असलु अन्नल मुसम्मा इदा काना मिन जिंसिल मुशारी इलैही, कि मुसम्मा जो है जब वो मुशारुन इलैह की जिंस में से हो तो यतअल्लकुल अक्दु बिल मुशारी इलैही, तो आकद का ताल्लुक मुशारुन इलैह से होगा, यानी वही महर बनेगा, वही महर बनेगा। लिअन्नल मुसम्मा मौजूदुन फिल मुशारी जातन, इसलिए क्योंकि मुसम्मा जो है वो मौजूद है मुशारुन इलैह में जातन, जात के एतबार से। भाई देखो ना, आजाद आदमी और गुलाम के मनाफिया एक जैसे हैं, उनके मकासिद तकरीबन एक जैसे हैं, तो लिहाजा ये एक जिन्स हैं। तो इस आदमी ने जिक्र किसको किया? गुलाम को। तस्मिया किसका है? गुलाम का। और इशारा किसकी तरफ है? आजाद आदमी की तरफ। तो वो गुलाम जो है वो अपनी जात के एतबार से इस आदमी में मौजूद है, क्योंकि आजाद आदमी ये भी किसे कहते हैं? मुजक्कर इंसान को। और गुलाम भी किसे कहते हैं? मुजक्कर इंसान को। तो जिसकी तरफ इशारा किया ये भी क्या है? मुजक्कर इंसान है। तो देखो गुलाम अपनी जात के एतबार से इसके अंदर ही मौजूद है, गुलाम भी क्या है? मुजक्कर इंसान है। तो गुलाम अपनी जात के एतबार से मौजूद है, हां वसफ के एतबार से मौजूद नहीं, क्योंकि ये आजाद आदमी है, गुलाम नहीं। तो जात वही है, वसफ वो वाला नहीं। ये माना है लिअन्नल मुसम्मा मौजूदुन फिल मुशारी जातन, इसलिए क्योंकि मुसम्मा यानी वो जिसका नाम जिक्र किया गया था, यानी गुलाम जो है मौजूदुन फिल मुशारी, वो इस मुशार यानी आजाद आदमी के अंदर मौजूद है जातन, अपनी जात के एतबार से। क्योंकि गुलाम की जात भी क्या? मुजक्कर इंसान। और आजाद आदमी की जात भी क्या? मुजक्कर इंसान। तो यहां पर गुलाम की जात मौजूद है। तो कहते हैं लिअन्नल मुसम्मा मौजूद उन फिल मुशारी जातन, तो मुसम्मा जो है वो मुशार के अंदर मौजूद है जात के एतबार से। वल वस्फु यतबाउहू, और वसफ तो जात के ताबे होता है, असल जात है, वसफ जात के ताबे हुआ करता है। तो गुलाम होना या न होना यह वसफ है। तो उस आजाद आदमी के अंदर गुलाम की जात तो मौजूद है, लेकिन गुलाम का वसफ मौजूद नहीं, वो तो आजाद आदमी है, गुलाम नहीं है। लेकिन कोई हर्ज नहीं, वसफ जात के ताबे हुआ करता है, वसफ का एतबार नहीं, असल एतबार जात का है। जब जात मौजूद है तो वह मुशारुन इलैह ही महर बनेगा। बात समझ में आ गई? कहते हैं लिअन्नल मुसम्मा मौजूदुन फिल मुशारी जातन, इसलिए क्योंकि वो जो मुसम्मा है वो मौजूद है मुशारुन इलैह में जातन, जात के एतबार से। वल वस्फु यतबाउहू, और वसफ जो है वो तो जात के ताबे होता है, ताबे का एतबार नहीं होता, असल का एतबार होता है। व इन काना मिन खिलाफी जिनसी ही, और अगर मुसम्मा जो है वो मुशारुन इलैह की जिन्स के खिलाफ हो, तो यतअल्लकु बिल मुसम्मा, तो फिर आकद का ताल्लुक किससे होगा? मुसम्मा से होगा। तो कहते हैं वह इनका ना मिन खिलाफी जिनसी ही, और अगर मुसम्मा जो है मुशारुन इलैह की जिन्स के खिलाफ हो, यानी दोनों की जिन्सें अलग अलग हों, यतअल्लकु बिल मुसम्मा, तो फिर आकद का ताल्लुक मुसम्मा से होता है। यानी मुशारुन इलैह और मुसम्मा की जिन्सें अलग अलग हो तो फिर तस्मिया का एतबार किया जाता है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का जाब्ता चल रहा है। तो शराब और सिरके की जिंस अलग अलग है, तो किसका एतबार किया जाएगा? मुसम्मा का, जिसका नाम जिक्र किया था, तो लिहाजा उसका हम वजन सिरका देना पड़ेगा। तो कहते हैं वह इनकान मिन खिलाफी जिनसी ही, और अगर मुसम्मा जो है वह मुशारुन इले की जिन्स के खिलाफ हो तो यह ताल्लुक बिल मुसम्मा, तो हकत का ताल्लुक मुसम्मा से होगा। लिअन्न अल मुसम्मा मिसलुन लिल मुशारि इलैही, इसलिए क्योंकि मुसम्मा मुशारुन इले के मिसल तो है, लेकिन वलैसा बितबिइन लहू, उसके ताबिअ नहीं, एक जिन्स दूसरी जिन्स के ताबिअ नहीं होती। वसफ तो जात के ताबे होता है, लेकिन एक जिन्स दूसरी जिन्स के ताबिअ नहीं होती, लिहाजा यहां पर मुसम्मा ही का एतबार करना पड़ेगा। तवज्जो है, वो जो गुलाम वाला मसला था वहां हमने मुशारुनिले का एतबार किया था, क्योंकि जात तो वही थी, गुलाम भी मुजक्कर इंसान होता है और वो आदमी भी क्या था, मुजक्कर इंसान था, तो उसी का एतबार किया जाएगा और गुलामी वाले वसफ का एतबार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वसफ ताबिया होता है, जात का एतबार किया जाएगा। वसफ का एतबार तो वही जात ही जो है वो महर बनेगी, लेकिन वो तो बन नहीं सकती, वो तो आजाद आदमी है, तो फिर महरमी सल आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों की जिनसे अलग अलग हों तो फिर वहां पर एक जिन्स को दूसरी जिन्स के ताबिया नहीं बनाया जा सकता। नाम तो सिरके का जिक्र किया है, इशारा शराब की तरफ है, लेकिन इस शराब को सिरके के ताबिया नहीं बनाया जा सकता भाई, क्योंकि जिन्सें क्या हैं, अलग। सिफत तो जात के ताबे हो जाती है, लेकिन एक जिन्स दूसरी जिन्स के ताबिया नहीं हो सकती। तो लिहाजा इस सूरत में जो मुसम्मा है, जिसका नाम जिक्र किया है, वो ही महर बनेगा। ये जो मुशारुन इले है, ये उसके ताबिया होकर ये महर नहीं बनेगा। ये माना है लिअन्न अल मुसम्मा मिसलुन लिल मुशारि इलैही, इसलिए क्योंकि मुसम्मा यानी वो जो सिरका है वो मुशारुन इले यानी शराब के मिसल है। वलैसा बिताबिइन लहू, और ये उसके ताबिअ नहीं है, क्योंकि दोनों की जिन्सें अलग अलग हैं। व तस्मियतु अबलगु फी तारीफ, इमाम साहब तो फरमाते थे कि इशारा अबलग है पहचान करवाने में, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तस्मिया अबलग आला है पहचान करवाने में। किस तरह, देखिए, कहते हैं वह तस्मिया तो अब लगूफी तारीफी, और तस्मिया जो है वो ज्यादा अफजल है पहचान करवाने में, वो आला है पहचान करवाने में। मिन हैसु इन्नहा तो अर्रिफुल माहियत, इस हैसियत से कि तस्मिया जो है ये माहियत की पहचान करवा देता है जी। तस्मिया जो है माहियत की पहचान करवा देता है। वल इशारा तू तो अर्रिफु जाता, और इशारा जात की पहचान करवाता है। देखो, इशारा करोगे ये वाली चीज, इससे जात की तो पहचान हो गई, ये वाली चीज मुराद है, कोई और चीज मुराद नहीं, लेकिन हाजा ये कहने से उस चीज की हकीकत का पता नहीं चला। तो इशारे से जात का तो पता चलता है, जात की तायीन हो जाती है, ये वाली चीज, ये वाली जात मुराद है, लेकिन उसकी माहियत का पता नहीं चलता। वो हाजा किताब भी हो सकती है, कलम भी हो सकता है, दीवार भी हो सकती है, मस्जिद भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। तो हादा से जात का तो पता चल जाता है कि इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, उसकी हकीकत और माहियत का पता नहीं चलता, जबकि तस्मिया से माहियत का पता चल जाता है। तस्मिया से माहियत और हकीकत का पता चल जाता है। मसलन सिरका कहा तो सिरके की माहियत का पता चल गया, मालूम हुआ वो चीज जिसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है जी। बात समझ में आ रही है, मालूम हुआ इशारे से सिर्फ जात की पहचान होती है और तस्मिया से किसी चीज की माहियत और हकीकत की भी पहचान हो जाती है। तो सिरका कहा, इशारा नहीं किया, सिर्फ नाम लिया, तो समझ गए खाने वाली चीज की बात हो रही है, माहियत का पता चल गया। शराब कहा तो माहियत का पता चल गया, यानी वो चीज जो नशा आवर है और इस्लाम में हराम है उसकी बात हो रही है, बात समझ में आ रही है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक तस्मिया अबलग है पहचान के अंदर, क्योंकि इसके जरिए चीज की हकीकत का पता चल जाता है, और इशारे के जरिए जात का तो पता चलता है, हकीकत का पता नहीं चलता। तो कहते हैं वह तस्मिया तो अब लगूफी तारीफी, और तस्मिया जो है वह अफजल है तारीफ में यानी पहचान करवाने में। मिन हैसु इन्नहा तो अर्रिफुल माहियत, इस हैसियत से कि यह माहियत की पहचान करवा देता है। बात समझ में आ गई, जब माहियत का पता चल जाएगा तो माहियत के मनाफिया का भी पता चल जाएगा। कि इसके क्या क्या फायदे हैं। वल इशारा तो तुअर्रिफु ज़ाता, और इशारा जो है वो सिर्फ जात की पहचान करवाता है। अल्लाह तारा, अब मजीद वजाहत कर रहे हैं, कहते हैं अल्लाह तारा, क्या आप देखते नहीं, अन्न मनिश तारा फसन अला अन्नहु याकूतुन फईदा हुआ ज़जाजुन ला यनअक़िदुल अक़्दु। भाई सूरत है मसला ये, एक शख्स ने अंगूठी वगैरह का एक नगीना बेचा। आप जानते हैं अंगूठियों में कीमती पत्थर वगैरह लोग लगवाते हैं, तो एक नगीना था, कीमती पत्थर था, एक शख्स ने दूसरे को बेचा कि भाई ये याकूत है, ये मैं तुम्हें 500 दिरहम में फरोख्त करता हूं। उसने कहा मुझे कबूल है। बाद में पता चला कि यह तो शीशा था भाई, ये क्या था, शीशा था जिसको रंग दिया गया था, हकीकत में वो याकूत और वो कीमती पत्थर नहीं था। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखो यहां पर जिक्र उसने याकूत को किया लेकिन वो निकला शीशा, तो बै किस पर हुई थी, हां बै मुसम्मा पर हुई थी जिसका नाम जिक्र किया गया था, और मुसम्मा तो यहां मौजूद ही नहीं है, लिहाजा ये बै मुनाकिद ही नहीं होगी क्योंकि मुसम्मा का एतबार है, क्योंकि दोनों की जिन्स अलग है, याकूत की जिन्स और है और शीशे की जिन्स और है, तो जब जिन्स अलग हो तो किसका एतबार होता है, तस्मिया का एतबार, मुसम्मा का एतबार होता है। गोया मुसम्मा की बै यहां हुई लेकिन मुसम्मा तो मौजूद ही नहीं, याकूत तो यहां है ही नहीं, तो लिहाजा इस सूरत में यह बै मुनाकिद नहीं होगी। जबकि इसके बरखिलाफ अगर एक शख्स किसी को एक याकूत बेचता है और मसलन अंधेरे में बेच रहा है, वहां रोशनी नहीं है, और कहता है यह सुरख याकूत है, मैं तुम्हें 500 दिरहम में बेचता हूं, बाद में देखा तो वह सबज याकूत निकला, वो सबज याकूत निकला, तो फिर इस सूरत में देखो दोनों की जिन्स एक है अगरचे सिफत अलग अलग है। बै किसकी कर रहा है, सुर्ख याकूत की, और निकला क्या, सबज याकूत, तो जिन्स तो वही है अलबत्ता सिफत अलग अलग है, तो फिर इस सूरत में बै मुनाकिद हो जाएगी क्योंकि क्योंकि दोनों की जिन्स एक है, जिन्स एक हो तो फिर बुशारुन इले का एतबार होता है, लिहाजा उसने सुर्ख याकूत कहकर बेचा और वो सबज याकूत निकला, तो दोनों की जिन्स एक है, जब जिन्स एक है तो मुशारुन इले का एतबार है, और मुशारुन इले यानी जिसकी तरफ इशारा किया था वो तो मौजूद था भाई, तो बै मुनाकिद हो गई, अलबत्ता वसफ वो वाला नहीं था तो मुश्तरी को इख्तियार मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, सिर्फ सिफत अलग है, फिर उस शख्स को इख्तियार होगा, उसने तो सुरख समझकर खरीदा था और निकला सबज, तो फिर उस खरीदार को इख्तियार होगा, बै मुनाकिद हो चुकी है, वो चाहे इसको कबूल करे चाहे रद्द कर दे। तो कहते हैं अल्लाह तारा, क्या आप देखते नहीं, अन्न मनीष तारा फसन, किसी ने कोई नगीना खरीदा, वो जो अंगूठियों में पत्थर लगाया जाता है उसको नगीना कहते हैं, मनीष तारा फसन जिसने नगीना खरीदा, अला अन्नहु याकूतुन, इस शर्त पर कि ये याकूत है, फईदा हुआ ज़जाजुन, तो अचानक वो शीशा था, ला यनअक़िदुल अक़्दु, तो आकद मुनअक़िद नहीं होगा क्योंकि मुसम्मा यानी याकूत मौजूद ही नहीं है यहां पर। तो कहते हैं ला यनअक़िदुल अक़्दु, अक़्द मुनअक़िद नहीं होगा, लिख्तिलाफिल जिन्स, जिन्स के मुख्तलिफ होने की वजह से, वलविश्तरा अला अन्नहु याकूतुन अहमरु, और अगर खरीदा इस शर्त पर कि यह सुर्ख याकूत है, फईदा हुआ अख़्ज़रु, तो अचानक वो सबज याकूत था, यनअक़िदुल अक़्दु लित्तिहादिल जिन्सी, तो अक़द मुनअक़िद हो जाएगा जिन्स के मुत्तहिद होने की वजह से। तो देखो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल की वजाहत कर रहे हैं साहिब हिदायत दो मिसालों के जरिए, कहते हैं देखो मसलन कोई शख्स याकूत बेचता है, वो शीशा निकला, तो दोनों की जिन्स अलग अलग है, तो इस सूरत में मुसम्मा का एतबार होगा और मुसम्मा तो याकूत था और वो तो यहां मौजूद ही नहीं, लिहाजा बै ही मुनाकिद नहीं होगी, और अगर जिन्स एक हो तो फिर बुशारुन इले का एतबार होता है, लिहाजा उसने सुर्ख याकूत कहकर बेचा और वह सबज याकूत निकला, तो दोनों की जिन्स एक है, जब जिन्स एक है तो मुशारुन इले का एतबार है, और मुशारुन इले यानी जिसकी तरफ इशारा किया था वो तो मौजूद था भाई, तो बै मुनाकिद हो गई, अलबत्ता वसफ वो वाला नहीं था तो मुश्तरी को इख्तियार मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे देखिए, कहते हैं वफी मसअलतीन अल अब्दु माल हुर्र जिन्सुन वाहिदुन, अब उसी मसले की वजाहत कर रहे हैं, वो जो पीछे बताया था कि गुलाम और आजाद दोनों एक ही जिन्स हैं, जब एक ही जिन्स है तो मुशारुन इले का एतबार होगा, और मुशारुन इले तो वो तो आजाद आदमी है, लिहाजा वो तो महर नहीं बन सकता, तो महरे मिसल आ जाएगा, और जबकि शराब और सिरके के अंदर दोनों की जिंसें अलग अलग थीं, और जब जिंसें अलग हो तो फिर मुसम्मा का एतबार होता है, लिहाजा वो उतना ही सिरका देना पड़ेगा। अब उसी को बयान कर रहे हैं, कहते हैं वफी मसअलतिन अल-अब्दु मअल हुर्रि जिंसुन वाहिदुन, और हमारे मसले के अंदर गुलाम आजाद के साथ जो है जिंसुन वाहिदुन, ये एक ही जिंस है। लिकिल्लति तफावुति फिल मनाफी, इसलिए क्योंकि इनके मनाफे और मकासिद में बहुत थोड़ा फर्क है, लिहाजा यहां मुशारुन इलैह का एतबार करेंगे। वल खमरु माल खल्ली जिंसानी, और शराब सिरके के साथ ये दो अलग जिनसे हैं। लिफुहश तफावुति फिल मकासिदी, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क है इनके मकासिद में, तो लिहाजा यहां पर मुसम्मा का एतबार होगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, फइन तज़व्वजहा अला हादैन अल-अब्दैन फइज़ा अहदुहुमा हुर्रुन फलैसा लहा इल्ला अल-बाकी इज़ा सावा 10 दराहिम इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह। अब दूसरी सूरत है भाई, एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और कहा कि महर में ये दो गुलाम मैं तुम्हें दूंगा। अब उन दो गुलामों में से एक आजाद निकला, दो गुलामों में से एक आजाद निकला। अब यही वही जाबता है, लेकिन अब सूरत मुरक्कब बन गई। पिछली सूरत में सारा ही गैर माल निकला था, सिरके के बजाय शराब निकली और गुलाम के बजाय आजाद आदमी निकला, और शराब भी माल नहीं और आजाद आदमी भी माल नहीं, लेकिन अब दो गुलामों की तरफ इशारा किया, दोनों में से एक आजाद निकला और एक गुलाम ही है। तो जाब्ते वही है जो पीछे जिक्र हो गए। इमाम साहब फरमाते हैं कि तस्मिया और इशारा जमा हो गए, हा ज़ैनिल अब्दैनी, ये वाले दो गुलाम, तो इशारा भी है और तस्मिया भी है, और इमाम साहब के नजदीक किसका एतबार होता है? मुशारुन इलैह का। तो ये ही महर बनेगा, और इनमें से एक तो आजाद है, वो तो महर बन नहीं सकता, लेकिन दूसरा तो महर बन सकता है, लिहाजा ये ही महर बन जाएगा। हां ये है, ये 10 दिरहम, ये मसलन ये तो गुलाम की मिसाल है, कहीं और किसी और चीज में भी इसी तरह मसला हो, दो चीजों की तरफ इशारा किया जाए और दो में से एक महर बन सके और एक महर न बन सके, तो फिर इस सूरत में ये 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 दिरहम से कम महर नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। तो इमाम साहब के नजदीक मुशारुन इलैह जो है वो ही महर बनेगा, और उसमें से एक तो आजाद है वो महर बन नहीं सकता, तो दूसरा जो गुलाम है वो ही महर बन जाएगा, तो लेकिन उसकी कीमत 10 दिरहम से कम नहीं होनी चाहिए। तो पिछले मसला में इमाम साहब ने कहा था महरे मिसल आएगा, वजह यह कि वहां सारा ही मुशारुन इलैह माल नहीं था, लेकिन यहां कुछ मुशारुन इलैह तो माल है, तो वही महर बन जाएगा। महर मिसल तब आता है जब मुसम्मा ना हो, जब मुसम्मा मौजूद है तो फिर महर मिसल नहीं आ सकता। तो इमाम साहब के नजदीक यही एक गुलाम यही महर बन जाएगा, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इशारा और तस्मिया जब जमा हो जाए तो उसमें तस्मिया का एतबार करते हैं, तो उनके नजदीक तस्मिया का एतबार है, और तस्मिया में तो दो गुलाम जिक्र किए हैं, लिहाजा दोनों ही महर बनेंगे, लिहाजा एक तो है ही गुलाम वो भी महर बन जाएगा, दूसरे की कीमत लगा ली जाएगी और वो कीमत बतौर महर के देना पड़ेगी। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इस मसले में इमाम साहिब के साथ थे, पीछे जो गुजरा था इशारा किया था आजाद आदमी की तरफ और जिक्र किया था गुलाम को, तो वहां क्या आता था? महरे मिसल। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह यहां भी फरमाते हैं कि यहां यही गुलाम महर बनेगा, लेकिन महरे मिसल को पूरा कर दिया जाएगा अगर महरे मिसल पूरा नहीं है। मसलन गुलाम 2000 का है और औरत का महरे मिसल 2500 बनता है, तो यह गुलाम भी दे देंगे और 500 दिरहम भी साथ दे देंगे ताकि महरे मिसल पूरा हो जाए। बात समझ में आ गई। तो इमाम साहब के नजदीक जो मुशारुन इलैह है वही महर बन जाएगा, बस 10 दिरहम से वो कम नहीं होना चाहिए। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक जो मुसम्मा है वो ही देना पड़ेगा, लिहाजा दो गुलाम ही देने पड़ेंगे भाई, एक तो गुलाम मौजूद है और दूसरे आजाद की कीमत लगा ली जाएगी। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक इस सूरत में महरे मिसल आता है, लिहाजा अगर इसी एक गुलाम से महरे मिसल पूरा हो रहा है यही दे देंगे, और अगर महरे मिसल इसे जायद है तो साथ कुछ और जायद पैसे भी मिलाकर औरत को दे दिए जाएंगे। जाबते समझ में आ गए। उन्हीं जाबतों पर यह मसला भी मबनी है कहते हैं फइन तज़व्वजहा अला हादैनिल अब्दैनि, और अगर किसी शख्स ने निकाह किया किसी औरत से अला हादैनिल अब्दैनि इन दो गुलामों पर, तो देखो इशारा भी है और तस्मिया भी है। फइदा अहदुहुमा हुर्रुन, तो उनमें से अचानक एक आजाद था, फलैसा लहा इल्लल बाकी, तो उस औरत के लिए नहीं होगा मगर बाकी ही, यानी वो एक गुलाम। इदा सावा आशरता दराहीमा, जब ये 10 दिरहम के बराबर हो, क्योंकि 10 से कम तो महार नहीं हो सकता। इंदा भी हनीफता रहिमहुल्ला, इमाम साहब के नजदीक, लियान्नहु मुसम्मन, इसलिए क्योंकि यही मुसम्मा है। ये जरा समझ लो, इशारा और तस्मिया जमा हो जाए तो इमाम साहब के नजदीक किसका एतबार? इशारे का। मालूम हुआ ये जिन दो गुलामों की तरफ इशारा किया है ये ही महर बनेंगे। मालूम हुआ ये ही महरे मुसम्मा हो गया जी। ये क्या हुआ? महरे मुसम्मा किसे कहते हैं? जो निकाह में महर मुकरर किया जाए। तवज्जो है। फिर दोहराओ जाब्ते को, इमाम साहब के नजदीक जब तस्मिया और इशारा जमा हो जाए तो किसका एतबार? इशारे का। तो जो मुशारुन इले है उसी ने महर बनना है, वही महरे मुसम्मा बनेगा जी। वही क्या है? महरे मुसम्मा बनेगा। तो लिहाजा इनमें से एक तो आजाद है, वो तो महर बन नहीं सकता, लेकिन दूसरा तो गुलाम है, तो यही गुलाम क्या हो गया? महरे मुसम्मा हो गया। बात समझ में आ गई। ये माना है लिअन्नहु मुसम्मन, इसलिए क्योंकि ये जो बाकी है यही वो मुसम्मा है। वह वजूबुल मुसम्मा, और जब मुसम्मा वाजिब हो रहा हो, वह इन कल्ला, अगरचे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, यम नाउ वजूबा महरिल मिसली, वो महरे मिसल के वजूब से मान्य होता है। भाई निकाह में महरे मिसल कब आता है? जब मुसम्मा महर ना हो। तो जब मुसम्मा महर ना हो फिर महरे मिसल आया करता है, और यहां तो मुसम्मा मौजूद है, ये जो मुशारुन इलैह है यही महरे मुसम्मा बन गया। तो महरे मुसम्मा चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो फिर भी महरे मिसल नहीं आ सकता। जैसे वो पीछे मिसाल गुजरी थी, एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया था और 5 दिरहम महर मुकरर किया था, और वहां आपने क्या पढ़ा था कि उसी 5 को पूरा कर दिया जाएगा 10 तक। भाई महरे मिसल नहीं आएगा बल्कि उसी 5 को 10 तक पूरा कर दिया जाएगा। तो यहां पर भी महरे मुसम्मा मौजूद है क्योंकि एक गुलाम है, और जब महरे मुसम्मा मौजूद हो तो महरे मिसल नहीं आता। चाहे मुसम्मा थोड़ा ही क्यों ना हो फिर भी महरे मिसल नहीं आता। अगर मुसम्मा थोड़ा है तो उसको 10 तक पूरा कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिअन्नहु मुसम्मन, क्योंकि ये जो बाकी का गुलाम है यही महरे मुसम्मा है। व वजूबुल मुसम्मा व इन कल्ला यमनउ वजूब महरिल मिसली, और महरे मुसम्मा का वाजिब होना अगरचे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो वो महरे मुसम्मा, यमनउ वजूब महरिल मिसली, ये महरे मिसल के वजूब को रोक देता है, यानी मुसम्मा के साथ महरे मिसल नहीं आ सकता। वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं, लहल अब्दु वकीमतुल हुर्री लौकान अब्दन, कि इस औरत के लिए ये वाला गुलाम, इमाम अबू यूसुफ क्या फरमाते थे, तस्मिया का एतबार है और तस्मिया में दो गुलाम जिक्र किए हैं तो दोनों देने पड़ेंगे, एक तो गुलाम है वही दे देंगे और दूसरे की कीमत। वकाल अबू यूसुफ रहमला, और इमाम अबू यूसुफ रहमला फरमाते हैं, लहल अब्दु वकीमतुल हुर्री लौकान अब्दन, कि इस औरत के लिए वो एक बाकी गुलाम होगा, वकीमतुल हुर्री, और आजाद आदमी की कीमत होगी, लौकान अब्दन, अगर वो गुलाम होता, यानी उसकी कीमत लगा लेंगे। लिअन्नहु अतमअहा सलामतल अब्दैनी, इसलिए क्योंकि खावंद ने उस औरत को लालच दिलाया है सलामतल अब्दैनी, दो गुलामों की सलामती का, कि ये दोनों सही सालिम गुलाम मैं तुम्हारे हवाले करूंगा। वाजाजान तस्लीमी अहदिहिमा, और इन दो में से एक के सुपुर्द करने से तो वह आजिज आ गया वो खावंद, फतजिबू कीमतु हो, तो उस एक की कीमत वाजिब होगी। वकाल मुहम्मद रहमहुल्लाह, और इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वह हुआ रिवायतुन अन अबी हनीफता रहमहुल्लाह, और यही एक रिवायत इमाम साहेब से भी है। इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह क्या फरमाते थे, यही एक गुलाम देंगे और अगर ये महरे मिसल से कम है तो महरे मिसल तक इसको पूरा कर देंगे।
تو کہتے ہیں وقال محمد رحمہ اللہ وہو روایت عن ابی حنیفہ رحم اللہ, اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اور یہی ایک روایت ہے امام صاحب سے بھی, کیا فرماتے ہیں کہ لہل عبد الباقی و تمام مہر مثلہا, کہ عورت کے لیے یہ باقی کا غلام ہوگا اور پورا کرنا ہوگا مہر مثل کا, ان کا نا مہر مثلہا اکثر من قیمت العبد, اگر اس عورت کا مہر مثل اس غلام کی قیمت سے زیادہ ہے تو اس کو پورا کر دیں گے, وہ اتنے پیسے ساتھ دے دیں گے. لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا حُرَّيْنِ يَجِبُ تَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ, وہ فرماتے ہیں دیکھو یہ تو ایک غلام آزاد نکلا ہے, اگر دونوں آزاد نکلتے پھر کیا ہوتا, پھر وہی جو پچھلے مسئلے میں تھا, پچھلے مسئلے میں تسمیہ اور اشارہ جمع ہوئے تھے, یہ والا غلام تمہیں دوں گا اور وہ کیا نکلا آزاد, تو جب دونوں کی جنس ایک ہو تو پھر کس کا اعتبار ہوتا ہے, مشارن الیہ کا, اور مشارن الیہ تو آزاد ہے, لہذا وہاں مہر مثل آیا, چاہے ایک غلام ہو چاہے دس غلام ہو, دس غلاموں کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا یہ سارے غلام میں تمہیں دوں گا, وہ سارے ہی آزاد نکلے, غلام اور آزاد دونوں کی جنس کیا ہے ایک, جب جنس ایک ہو تو کس کا اعتبار ہوتا ہے, مشارن الیہ کا, تو ان دس نے ہی مہر بننا تھا لیکن یہ تو سارے آزاد ہیں, جب سارے آزاد ہیں یہ تو مہر نہیں بن سکتے تو پھر کیا آ جائے گا مہر مثل, تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر دونوں غلام آزاد نکلتے تب بھی مہر مثل نے آنا تھا, لہذا ایک آزاد نکلا ہے اب بھی مہر مثل آئے گا, لہذا یہ غلام جو ایک سالم بچ گیا ہے یہ بھی دیں گے اور مہر مثل کو پورا کر دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی, کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا حُرَّيْنِ يَجِبُ تَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَهُ, اس لیے کیونکہ اگر یہ دونوں غلام آزاد ہوتے تو بھی مہر مثل پورا واجب ہوتا, عِنْدَهُ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک, فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا يَجِبُ الْعَبْدُ وَتَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ, تو جب ان دونوں میں سے ایک غلام ہے تو یجب العبد, تو یہ غلام بھی واجب ہوگا, و تمام مہر المثل, اور مہر مثل کا پورا کرنا بھی ہوگا, اس کو بھی پورا کیا جائے گا اگر پورا نہیں ہو رہا, اگر پورا ہو چکا ہے پھر تو اور کچھ مزید دینے کی ضرورت نہیں, یہی غلام دے دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی, اور یاد رکھنا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صاحب ہدایہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ مذاہب بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ مذہب بیان کرتے ہیں جو مذہب راجح ہو, اور جب دلائل ذکر کرتے ہیں تو جو مذہب راجح ہوتا ہے اس کی دلیل سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں, تاکہ یہ اس مذہب کی دلیل بھی ہو جائے اور باقیوں کے لیے جواب بھی ہو جائے. اور ان دونوں مسئلوں میں آپ دیکھیں صاحب ہدایہ نے امام محمد رحم اللہ کی دلیل کو سب سے آخر میں ذکر فرمایا ہے, معلوم ہوا صاحب ہدایہ یہاں امام محمد رحم اللہ کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.